दिन भर तारीख 18 सितंबर दिन शुक्रवार में हूं विनीत खरे। पाकिस्तान में तालिबान के हमले में 13 चरमपंथियों सहित 29 की मौत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई दस्तावेज हुए सार्वजनिक। जानेंगे बिहार के बुजुर्ग विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं।
52 और 57 में जातवाद इतना नहीं, ऊपर में जातवाद था कि राजपूत है, भूमिहार है, क्या है भाजपा का मुद्दा, विकास है वो बोल रहा है।
और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर विशेष सीरीज में आज फील्ड मार्शल करियप्पा के बेटे नंदू करियप्पा की कहानी।
रावलपिंडी में भी मैं सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रहा और उस समय प्रेसिडेंट अय्यूब खान के जो लड़का था ही केम टू सी मी एंड ही ब्रॉट मी अ टिन ऑफ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान के पेशावर में वायुसेना के बेस कैंप में एक चरमपंथी हमले के दौरान कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। खबर है कि हमले में सेना की कार्रवाई के दौरान 13 चरमपंथी भी मारे गए। यह हमला पेशावर के बेस कैंप में मौजूद एक मस्जिद में हुआ। पाकिस्तान तालिबान ने एक ईमेल के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले और इसकी जवाबी सैन्य कार्रवाई में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। मानवाधिकार संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सरकारी युद्ध विमानों ने पलमायरा शहर में आईएस लड़ाकुओं पर कम से कम 25 हवाई हमले किए हैं। इस निगरानी संस्था के मुताबिक जिहादी इलाकों में सीरियाई बमबारी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी। कल सीरियाई बलों ने उत्तरी शहर रक्का में आईएस ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। मई में आईएस ने पलमायरा में कई प्राचीन स्मारकों को उड़ा दिया था। पोप फ्रांसिस के सहयोगियों के मुताबिक पोप फ्रांसिस दमिश्क के एक सीरियाई शरणार्थी परिवार को वेटिकन में अपने अपार्टमेंट में रहने की जगह दे रहे हैं। पोप ने जिन दो परिवारों को अपने यहाँ शरण देने का वायदा किया था उनमें से ये पहला परिवार है। यूरोप में प्रवासियों के संकट से निपटने की यूरोपीय कोशिशों में ये पोप का योगदान माना जा रहा है। अमरीका ने चीन के मोस्ट वांटेड संदिग्ध अपराधी को वापस चीन भेज दिया है। पूर्व व्यापारी यांग जिनजुन पर धोखाधड़ी और रिश्वत लेने का आरोप था। माना जा रहा है कि 2001 में वे अमरीका भाग गए थे। चीन ने जब से विदेश में रह रहे भ्रष्टाचार के संदिग्धों को वापस लाने का अभियान चलाया है तब से अमरीका से वापस भेजे जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। हवाई अड्डे पर यांग के पहुंचने और पुलिस के उन्हें ले जाने के बाद चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी यांग शोबेन ने पत्रकारों से बात करते हुए चीन और अमरीका के संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की। यांग जिनजुन की चीन में सफलतापूर्वक वापसी चीनी और अमरीकी अधिकारियों के बीच लगातार संवाद और सहयोग का ही नतीजा है। भ्रष्टाचार के संदिग्धों को पकड़ने में चीनी और अमरीकी कानून व्यवस्था एजेंसियों के आपसी सहयोग की दिशा में ये एक अहम कदम है। अमरीकी सरकार ने इसमें हमारी जो मदद की हम उसकी सराहना करते हैं। ये थे यांग शोबेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पिछले एक हफ्ते में 45 लोगों को कुछ परीक्षा पत्र लीक करने के शक में गिरफ्तार किया है। हाल ही में पकड़े गए लोगों में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सहनिदेशक भी शामिल हैं। रिपोर्टों के मुताबिक लीक हुए ये परीक्षा पत्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हो रही परीक्षा के हैं। पुलिस को शक है कि इसके पीछे रिश्वत लेकर नकल करवाने वालों का एक व्यवस्थित रैकेट काम कर रहा है। डच पुलिस ने दो सीरियाई लोगों को मानव तस्करी का गिरोह चलाने के शक में गिरफ्तार किया है। सरकारी वकीलों का कहना है कि इन लोगों ने ग्रीस के रास्ते सैकड़ों लोगों को यूरोप में गैरकानूनी तरीके से पहुंचाया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब एक साल से इन संदिग्धों की तहकीकात चल रही थी। ये लोग प्रवासियों से यूरोप पहुँचाने के लिए $9,000 प्रति व्यक्ति ले रहे थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि तालिबान चरमपंथियों ने एक हमले में 13 चरमपंथियों सहित 29 लोग मार दिए हैं। तालिबान ने 16 लोगों की हत्या उस वक्त की जब वो पेशावर में एक एयरबेस के भीतर मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहे लोग थे उन पर गोली चलाई। पिछले दिसंबर में एक स्कूल में बच्चों की हत्या के बाद ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी चरमपंथी कार्रवाई है। सेना का कहना है कि भारी हथियारों से लैस चरमपंथी अफसरों की वर्दी पहने हुए थे और उन्होंने एयरबेस पर दो ठिकानों पर हमला किया। सेना के मुताबिक गोलीबारी में 13 चरमपंथियों के अलावा सेना का एक कैप्टन भी मारा गया है। इस्लामाबाद में एक बीबीसी संवाददाता के मुताबिक वायुसेना का जो अड्डा है वो चारों ओर कबाइली इलाके से घिरा हुआ है और इन्हीं इलाकों में चरमपंथी जन्म लेते हैं। पेशावर से बीबीसी संवाददाता अजीजुल्ला खान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजीजुल्ला खान, बताएं सुबह से ये क्या वाकया हुआ, कैसे और हुआ और अधिकारी क्या कह रहे हैं, कहाँ चूक रह गई?
असल में ये वाक्या उस वक्त हुआ जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये सुबह 5:30 का वक्त था और ये दो हिस्सों में तकसीम होकर ये चरमपति ये आए। एक तो मेन रोड की तरफ से आए कुछ, और जो आठ थे वो पिछली साइड से उन्होंने हमला किया। तो पिछले जो सामने थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनके सामने आए तो उनके साथ एक जगह पे उनकी मतभेद हुई, तो दूसरे तरफ पिछली साइड पे जहां मस्जिद थी लोग नमाज पढ़ रहे थे वो वहां पर आए, उन्होंने वहां पर फायरिंग भी की। 16 तो नमाजी वहां पे इसमें हलाक हुए और फिर 7 बैरक में भी हलाक हो गए। इसी तरह जो क्विक रिस्पांस फोर्स थी सिक्योरिटी फोर्सेस की और साथ में पुलिस के एहलकार भी थे, साथ में जो फ्रंटियर कोर के लोग थे वो भी उनके साथ थे, और ये फौरन 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको घेर लिया और उनको कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया। अब से थोड़ी देर पहले जो फौज के तालुकात आमा यानी कि ISPR के तर्जुमान हैं उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इनको वहां पर रोका गया, जो हमलावर थे उनको रोका गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन जब तक वो होते तो उन्होंने ये नुकसान किया था। इसमें कुल 29 अफराद हलाक हुए जिनमें 23 एयरफोर्स के थे और 3 पाकिस्तान आर्मी के थे जिनमें उनके एक अफसर भी शामिल हैं, 4 शहरी भी इसमें हलाक हुए हैं और 13 हमलावर भी इसमें मारे गए हैं।
अजीजुल खान, जैसा कि मैंने कहा ये हमला कई महीनों बाद हुआ है, बड़ा हमला है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वहाँ पर, क्या डर ये जताया जा रहा है कि जो हमले पहले हो रहे थे लगातार एक के बाद एक के बाद एक, वो क्या हमले फिर से हो सकते हैं?
जो सिक्योरिटी एहलकार हैं और जो वो कह रहे हैं कि जो उनकी कमर है वो तोड़ दी गई है, वो अब इतनी इसमें नहीं है कि वो कोई ज्यादा हमले कर सकें। ये कोई लगभग 9 माह के बाद ये हमला हुआ है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में स्कूल पर बड़ा हमला हुआ था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, ज़र्ब आज़्ब शुमाली वजीरिस्तान एजेंसी में भी किया, खैबर एजेंसी में भी किया, उससे इनका कहना है कि उनकी बड़ी तादाद में वो अब कमर तोड़ दी गई है, उनके बहुत सी हलाकतें भी हुई हैं। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है कि साथ में खैबर एजेंसी में उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और ये हो सकता है जो उन्होंने कहा है कि ये अफगानिस्तान में इसकी मंसूबाबंदी हुई है और उधर से ये लोग यहाँ पर आए हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि फर्दर तहकीकात हो रही हैं कि मालूम किया जा सके कि ये किस नोयत का था और ये कैसे हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको रोकने के लिए और इसके इस पे काफी हद तक सिक्योरिटी फोर्स या सेना जो है वो कामयाब हुई है, और ये काफी अरसे के बाद होना ये कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन यह है कि हम इनको मजीद इसके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, तहकीकात भी हो रही हैं कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हों।
पेशावर से अजीजुल्ला खान, शुक्रिया आपका। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया है। 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर कई सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। माना जाता है कि आज जारी किए गए दस्तावेजों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके परिवार के जीवन पर और रोशनी पड़ेगी। कोलकाता से अमिताभ भट्टशाली।
पश्चिम बंगाल सरकार ने आज सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित 64 टॉप सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। 12,000 से भी ज़्यादा पन्ने हैं इन सब फाइलों में। खास बात तो ये है कि ब्रिटिश सरकार जैसे नेताजी और उनके परिवार पर खुफिया नज़र रखते थे, उसी तरह स्वतंत्रता के बाद भी भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार बोस परिवार के पीछे खुफिया अफसर को छोड़ रखे थे। बोस परिवार का एक सदस्य चंद्र कुमार बोस बोल रहे थे कि इन सब फाइलों में सबसे महत्वपूर्ण तो ये सबूत है कि 1945 में नेताजी कोई विमान हादसे में नहीं मारा गया था।
প্রকাশ্যে লিখেছে যে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এবং আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স বলছেন।
चंद्रकुमार बोस का कहना था CID की एक रिपोर्ट है जिसमें अमरीकी और ब्रितानी खुफिया एजेंसियों को कोट करते हुए लिखा गया है कि ताइहोकू में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था और उसमें नेताजी का देहांत भी नहीं हुआ था। इसके अलावा दूसरा एक रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कि नेताजी कम से कम सन 1964 तक जिंदा थे। चंद्र कुमार बोस का शब्द। उनका यह भी आरोप है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पश्चिम बंगाल का पहला मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय और एक मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय ने मिलकर कई अहम सबूत नष्ट कर दिया है, जिसमें सन 1945 के बाद नेताजी का क्या हुआ था उसका उल्लेख था।
हमरा आज के दावी कोची जे कांग्रेस सरकार मिस्टर पंडित नेहरू আমল থেকে, ইন্দিরা গান্ধী সরকারের আমল থেকে এবং ডক্টর বি সি রায় আর সিদ্ধার্থ রায়। যে
চন্দ্র কুমার বোস বল রে থে জওহরলাল নেহরু, বিধান চন্দ্র রায় আর সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নে দস্তাবেজো কো নষ্ট কর দিয়া, জলা দিয়া গিয়া, ইয়ে রাষ্ট্রকে সাথ বিশ্বাসঘাত হ্যায়। উন সব ফাইলো মে 1945 কে বাদ কে ঘটনাও কা সবুত থা চন্দ্র কুমার বোস কা শব্দ। বোস পরিবার কা মাং হ্যায় কে প্রধানমন্ত্রী কে পাস 100 কে করিব জো ফাইল হ্যায় নেতাজি সে সম্বন্ধিত, ও আব সার্বজনিক কর দিয়া যায়। হালাকি হর এক সরকার নে ইস মাং কো ঠুকরাতে আয়ে হ্যায় ইয়ে কহকর কে আগর উন সব দস্তাবেজো কো সার্বজনিক কর দিয়া যাতা হ্যায় তো এক বিদেশি রাষ্ট্র কে সাথ ভারত কা সম্বন্ধ খারাপ হো জায়েগা। বোস পরিবার কা ইয়ে ভি মাং হ্যায় কে দস্তাবেজো কো সার্বজনিক করকে এক যাঁচ কমিটি বানায়া যায় জো ইয়ে পতা করে কে 18 আগস্ট 1945 কে বাদ নেতাজি বাকেই চীন কে রাস্তে রাশিয়া পৌঁছে থে ইয়া নহি, ইয়া ফৈজাবাদ মে রহনে ওয়ালা সন্ত গুমনামী বাবা আসল মে নেতাজি থে ইয়া নহি।
ये रिपोर्ट थी कोलकाता से अमिताभ भट्टासाली की।
बीबीसी इंडिया बोल।
लखनऊ में सचिवालय चपरासियों के कुल 368 पदों के लिए करीब 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए। आवेदन करने वालों में पीएचडी से लेकर बीटेक डिग्री वाले भी शामिल हैं। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लगातार युवाओं को नौकरियां देने के वायदे करती रही हैं, लेकिन नौकरियों की कमी बरकरार है। लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा करने के वायदे करने वाली पार्टियां आखिर क्या कर रही हैं? 19 सितंबर के इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। इस बार भी इंडिया बोल 7:30 बजे नहीं बल्कि 9:30 बजे घटना चक्र के वक्त होगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक नोट जारी कर कहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली रेडिएशन का इंसानों पर भी असर पड़ सकता है। नोट के मुताबिक वायरलेस फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और माइक्रोवेव जैसे सभी उपकरणों में सबसे ज्यादा रेडिएशन मोबाइल टावर से हो सकता है। पर हाल ही में बीबीसी से बातचीत में दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोबाइल टावर से रेडिएशन के खतरे की आशंका को बेबुनियाद बताया था। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के एक आकलन के मुताबिक जल्द ही देश में इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फोन्स की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। इन मोबाइल्स तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए करीब 5 लाख टेलीकॉम टावर हैं। अब मूल सवाल ये कि क्या इन टावर्स से होने वाला रेडिएशन इंसानों के लिए खतरनाक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक एक शोध बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली रेडिएशन से जनजीवन को खतरा है और इंसानों को भी होने की संभावना है। CPCB ये भी कहता है कि सभी उपकरणों में मोबाइल टावर सबसे खतरनाक हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि टावर में एक ही जगह पर बहुत सारी रेडिएशन होती है और कितने टावर कहाँ लगाए जा रहे हैं इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं अपनाया जा रहा। तो इस खतरे पर और जानकारी जुटाने और एहतियात बरतने के लिए क्या किया जा रहा है? CPCB की अतिरिक्त निदेशक मीतू शर्मा।
ये बार बार हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बोलते हैं, दिस इज एन प्रोडक्ट विच इज इंस्टॉल्ड बाय देम, तो उनको पूरा सर्वे करना चाहिए। तो यही सारे, दिस इज द सेम स्टैंड वी टेक एंड वी हैव, हमारी वेबसाइट पे हमने एक नोट भी लगाया है, अवेयरनेस नोट, जो हमारी डायरेक्शन दिया है, वी हैव टू पुट अप एन अवेयरनेस नोट।
यानी हवा, पानी और शोर से जुड़े प्रदूषण तो CPCB की जिम्मेदारी है, लेकिन रेडिएशन से होने वाला प्रदूषण दूर संचार विभाग के जिम्मे है, क्योंकि मोबाइल टावर उन्होंने ही लगवाए हैं। दरअसल मोबाइल टावर और फोन के रेडिएशन पर भारत के संविधान में 3 कानून भी हैं, पर इनसे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर कोई कानून नहीं है। ये जरूर है कि एहतियात के तौर पर सरकार ने मोबाइल टावर बनाने के दिशा निर्देश में रेडिएशन के स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ही काफी कम रखने को कहा है, पर ऐसा हो रहा है कि नहीं इस पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। टावर लगाने वाली कंपनी को ये खुद ही दूर संचार विभाग को बताना होता है। अब इसमें कोई बदलाव की उम्मीद भी नहीं दिखती, क्योंकि दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का मानना है,
ये रेडिएशन का जो फियर है इसको मैंने प्रोएक्टिव होकर बताया है, इसका कोई आधार नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, मैं खुद प्रोएक्टिवली बोल रहा हूँ, सरकारी बिल्डिंग पर टावर बिठाने दिया जाए, प्रदेश में मैंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है, तो ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
हाल ही में बीबीसी को दिए इस इंटरव्यू में रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि जिन्हें रेडिएशन से ज्यादा खतरा लगता हो वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। पर मसला मोबाइल फोन का नहीं है। CPCB के मुताबिक मोबाइल फोन से बहुत कम मात्रा में रेडिएशन निकलती है, बल्कि ये एक रेडियो सेट से निकलने वाली रेडिएशन से भी काफी कम है, पर मोबाइल टावर से इनसे कई गुना ज्यादा रेडिएशन पैदा होती है। अब इनसे इंसानों पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, जब तक ये बहस जारी है, हम ये ध्यान में रख लें कि चीन के बाद भारत में ही दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सब्सक्राइबर हैं, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक भारत में अभी 1,00,000 मोबाइल टावर और लगाने की जरूरत है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
बिहार विधानसभा चुनाव का शोर हर जगह है। नेताओं के भाषण, उनकी जुबानी जंग, फेसबुक, ट्विटर, झंडा बैनर की खरीदारी, प्रचार के लिए गानों की रिकॉर्डिंग, उम्मीदवारों के लिए के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। लेकिन चुनाव के इस शोर के बारे में वो क्या सोचते हैं जिन्होंने 1952 का चुनाव लड़ा था या फिर उसे देखा था? पटना में सीटू तिवारी आपको मिला रही हैं तीन बुजुर्ग नेताओं से जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है।
92 साल के गणेश शंकर विद्यार्थी पटना के BMP 5 के पास बने अपने घर में बैठे हैं। घर बड़ा है लेकिन सिर्फ ईंट का ढांचा खड़ा है, उस पर प्लास्टर नहीं हो पाया है। बताते हैं कि पत्नी के जेवर बेचकर जमीन ली, गांव की जमीन बेची तो ढांचा खड़ा किया, अब फिर जमीन बेचेंगे तब घर का प्लास्टर हो पाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी 1977 और 1980 में नवादा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। आज़ादी के आंदोलन में छात्र नेता के तौर पर स्थापित हो चुके गणेश शंकर ने 1952 में पहली बार चुनाव लड़ा। वो बताते हैं कि पहले चुनाव में पैसा नहीं चलता था, पैदल प्रचार होता था, सबके सहयोग से रसोई बनती थी और नामांकन का पैसा भी चंदे पर जुटता था। अब के चुनाव को किस तरह से वो देखते हैं, पूछने पर गणेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं,
मुद्दों का सवाल रहता, 52 और 57 में जातवाद इतना नहीं, ऊपर में जातवाद था कि राजपूत है, भूमिहार है और उसके कुछ कारकुन लोग इस रूप में बटे होते, लेकिन आम जनता में यह बात नहीं थी। वह मुद्दा अब कुछ नहीं है। क्या है भाजपा का मुद्दा? विकास है, वो बोल रहा है। लालू यादव और नीतीश का भी यही है।
95 साल के LP शाही अपने पटना के बोरिंग रोड स्थित बड़े से घर में लेटे हुए हैं। उनके घुटनों में तकलीफ है और वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। LP शाही 1957 में बिहार सरकार में उद्योग, ट्रांसपोर्ट, खनन और जनसंपर्क मंत्री रहे। बाद में वो केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। 1952 और 1957 के चुनावों में उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए खर्च किए थे। वो बताते हैं कि पहले नेता और जनता का रिश्ता अच्छा होता था, अब तो दोनों का रिश्ता नफे नुकसान वाला हो गया है।
एक बदलाव तो जनता और नेता के बीच का जो होना चाहिए वो रिश्ता बहुत बदल गया है। अब वोटर सोचता है कि हम इनका काम करेंगे तो हमको पैसा दें। एक ही बार पैसा हारा है, जब कस के इंदिरा गांधी को धक्का देने की तैयारी हुई थी।
भागलपुर के पूर्व सांसद प्रोफेसर रामजी सिंह 90 साल के हो चुके हैं। आंखों में रोशनी बहुत कम रह गई है लेकिन अभी भी ग्राम स्वराज के लिए काम करते रहते हैं। रामजी सिंह कहते हैं कि पहले जब चुनाव होता था तब जनता आगे रहती थी और उम्मीदवार पीछे, लेकिन अब तो लोगों को पैसा खर्च करके जुटाना पड़ता है। 77 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया। वो राजनीति के सांप्रदायिक होते जाने पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं।
एक नागनाथ है तो दूसरे सांपनाथ। हम चाहते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में नहीं आवे, नहीं तो जल्दी विभाजन और एक विभाजन होगा। लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स कोई उसकी संजीवनी तो नहीं है।
राजनीति में इतनी सादगी और सच्चाई नए वोटरों के लिए चौंकाने वाली है, लेकिन ये वो बुजुर्ग नेता है जिन्होंने इस राजनीतिक सादगी की परंपरा का पालन किया। सीटू
बीबीसी पटना। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय फील्ड मार्शल करियप्पा के बेटे नंदू करियप्पा भारतीय वायुसेना में थे। जब वो पाकिस्तान अपना विमान लेकर एक मिशन पर गए तो विमान भेदी तोपों ने उनका विमान गिरा दिया और उन्हें युद्धबंदी बना लिया। पाकिस्तानी जेल में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान की पत्नी और बेटा उन्हें देखने आए। क्या था पूरा मामला, रेहान फजल बता रहे हैं 1965 युद्ध पर हमारी विशेष सीरीज की 18वीं कड़ी में।
भारत पाकिस्तान युद्ध के आखिरी दिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा, कुक्के सुरेश और AS सहगल को कसूर क्षेत्र में पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी करने का मिशन दिया गया। करियप्पा इस मिशन को लीड कर रहे थे। अचानक करियप्पा का हंटर नीचे से आ रही ग्राउंड फायर के चपेट में आ गया। सुरेश का ध्यान गया कि करियप्पा के विमान से लपटें निकल रही हैं। करियप्पा ने विमान को ऊपर उठाकर उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच कुक्के उन्हें 2 बार जहाज से इजेक्ट करने की सलाह दे चुके थे लेकिन करियप्पा ने उसे अनसुना कर दिया था। कुक्के 3री बार चिल्लाए, कैरी इजेक्ट। करियप्पा ने इस बार इजेक्शन का बटन दबा दिया। इसके एक क्षण बाद ही हंटर आग के गोले में बदला और भारतीय इलाके में जा गिरा। लेकिन करियप्पा जिस इलाके में गिरे उस पर पाकिस्तान का कब्जा था। उस समय 9:04 हुए थे, क्योंकि जमीन से टकराने की वजह से उनकी घड़ी उसी समय रुक गई थी।
मैं हलवारा से टेक ऑफ किया गया था और मेरे साथ 4 लोग थे। जैसे कि हम बॉर्डर को क्रॉस किए, थोड़ा उससे पहले एक जहाज को फिर वापस आने पड़ा क्योंकि उसका फ्यूल टैंक का कुछ नुक्स था। वापस आने के समय हमने देखा कि हम काफी नीचे थे और काफी तेज चल रहे थे, लेकिन ऐसे मालूम हुआ था कि एक आर्मी का फॉर्मेशन कैमोफ्लाज के पेड़ों के नीचे था। तो हमने एक चक्कर काट के उन पे हमला किया, लेकिन उसी समय जहाज को हिट लगा। स्मॉल आर्म्स या लाइट एंटी एयरक्राफ्ट, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे एक तो कंट्रोल्स जैम हो गए, जहाज को आग लग गया था और मेरा नंबर 2 जो था सैगल, उसने कहा यूर ऑन फायर इजेक्ट। और फिर कोई चंद सेकंड भी कम जहाज से निकले और फिर जमीन पे उतरे और लैंडेड ऑन माई बॉटम्स। कुछ मिनट के अंदर काफी लोग आए थे खाकी कपड़े यूनिफॉर्म पहनते हुए और उन्होंने कहा कि हैंड्स अप वगैरह वगैरह। तो मैंने उस वक्त नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान की हाथ में हूँ। फिर उसी समय हमारे आर्टिलरी फायरिंग करने लगे, तो उस वक्त किसी ने कहा दोज आर योर गन्स फायरिंग एट अस। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं कब्जा हो गया था। मेरे साथ एक रिवॉल्वर था मेरे ओवरऑल में, उन्होंने वो निकाला था और मैंने कहा मैं हिल नहीं सकता, चोट बहुत गंभीर है। तो उन्होंने एक स्ट्रेचर लेके आए और फिर मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेके गए।
बंदी बनने के बाद पाकिस्तानी अफसर ने जब उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो उन्होंने तोते की तरह अपना नाम, रैंक और नंबर बता दिया। तभी पाकिस्तानी अफसर ने उनसे पूछा कि क्या आपका संबंध फील्ड मार्शल करियप्पा से है।
मैं उससे पहले वो उन्होंने पूछा था कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा मेरा नाम है ये, मेरा नंबर ये है और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में तब तक तो जब से मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में गया था तो वहाँ भी मेरे यही सवाल पूछा गया कि तुम कौन हो। और जब उन्होंने करियप्पा का नाम सुना था तो उन्हें शायद मेरे पिताजी का नाम भी सुने होंगे, तो उन्होंने कहा आर यू हिज सन। तो मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा मेरा नंबर ये है, मेरा नाम रैंक ये है और ये मेरा नाम है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक रियर एड पोस्ट को लेके गए, फिर वहाँ से लाहौर में मैं सॉलिटरी में रहा। ट्रीटमेंट तो उन्होंने अच्छा किया था क्योंकि इजेक्शन के समय स्पाइन में थोड़ा जख्मी हुआ और मेरे हाथ को भी जख्मी हुआ था। जनरल मूसा साहब जो थे उनके सीएनसी पाक आर्मी के, वो मेरे कमरे में आया था और कहा कि अगर आप यहाँ से निकलने चाहते हो तो हम देखेंगे कि आपको और प्रिजनर के साथ मीट कर सकेंगे।
करियप्पा भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल करियप्पा के पुत्र थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान विभाजन से पहले करियप्पा के अंडर में काम कर चुके थे। अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान याद करते हैं।
तो ये और मेरे वालिद बहुत करीबी दोस्त थे और पार्टीशन से पहले करियप्पा साहब जो उनसे थे एक ब्रिगेड कमांड कर रहे थे इधर फ्रंटियर में और उनके नीचे बटालियन एक थी जो अयूब खान कमांड कर रहे थे, उससे इनकी बहुत करीबी दोस्ती हो गई थी। जब पार्टीशन हो रहा था तो जनरल करियप्पा ने यह भी सजेस्ट किया जी देखें इंडियन आर्मी को डिवाइड ना करें, अगर डिवाइड करते भी हैं इंडियन आर्मी को तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक रखें ताकि दोनों मुल्कों के ऑफिसर्स जो उनसे ट्रेन हो सके। लेकिन वो मुमकिन नहीं था। मेरे वालिद ने कहा, अयूब खान ने कहा कि नहीं करियप्पा ये हो नहीं सकेगा, नॉट पॉसिबल, वी कांट फ्लाई इट एनीमोर, वी आर फ्रेंड्स, वी शुड रिमेन फ्रेंड्स।
नंदा करियप्पा की पहचान पता चलने पर रेडियो पाकिस्तान ने उसी दिन घोषणा की कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा उनकी हिरासत में है और सुरक्षित है।
तो जो 65 में कॉर्डन लीडर केसी करियप्पा जो थे वो बॉम्बिंग मिशन के ऊपर आए तो उनका जहाज जो उनसे इट वाज शट डाउन एंड ही वाज टेकन प्रिजनर। अब जब प्रिजनर हो गए तो उनको CMH रावलपिंडी में ले गए। तो करियप्पा का नाम तो हर किसी को इल्म था आर्मी में के बड़े करीबी दोस्त हैं जनरल करियप्पा फील्ड मार्शल के, तो उनको ही वाज ट्रीटेड वेरी वेल। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी वालदा और मेरे बड़े भाई मरहूम अख्तर अयूब उनको देखने भी गए और फील्ड मार्शल साहब ने जनरल करियप्पा को मैसेज भी भेजा दैट केसी करियप्पा इज वेल एंड डोंट वरी अबाउट हिम।
एयर मार्शल करियप्पा इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि वास्तव में बेगम अयूब और उनके बड़े बेटे उन्हें देखने जेल में आए थे।
लाहौर से मैं एक जहाज में रावलपिंडी गया था और रावलपिंडी में भी मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा और उस समय प्रेसिडेंट अयूब खान के जो लड़का था ही केम टू सी मी एंड ही ब्रॉट मी आई रिमेम्बर अ टिन ऑफ स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट्स और एक पीजी वुडहाउस का किताब। वहाँ से रावलपिंडी में थोड़े देर ठहरे हुए, फिर मेरे को इंटरोगेशन सेल में ट्रांसफर किया था। उस इंटरोगेशन सेल में मैं ख्याल में कोई हफ्ता 10 दिन रहा सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, और फिर वहाँ से मेरे को प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप लेके गया था, और जहाँ एक सुबेदार साहब था जो उसको मालूम हुआ कि मैं क्या नाम है और मेरे पिताजी के कौन थे, तो उन्होंने कहा सुना है कि आप सदर कोठी से आ रहे हैं। मैंने हंसा, सदर कोठी से कि नहीं, मैं अभी इंटरोगेशन सेल से अभी यहाँ भेजाऊँ। और फिर यहाँ से रावलपिंडी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से हम दरगाही गए थे। दरगाही एक किला है NWFP में, और वहाँ मैं और औरों से मीट हुए। वहाँ कोई 37 आर्मी ऑफिसर्स थे और उनके साथ 2-3 दिन ठहरे। 22 जनवरी को अपना रिपैट्रिएशन हुआ।
इससे पहले अयूब ने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के जरिए फील्ड मार्शल करियप्पा से संपर्क साध कर उनके बेटे के सुरक्षित होने की खबर उन्हें दे दी थी। उन्होंने ये भी पेशकश की कि अगर वो चाहें तो उनके बेटे को छोड़ा जा सकता है। करियप्पा ने विनम्रता से इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायुक्त से कहा,
नंदू मेरा नहीं, इस देश का बेटा है, उसके साथ वही बर्ताव किया जाए जो दूसरे युद्ध बंदियों के साथ किया जा रहा है। अगर आप उसे छोड़ना ही चाहते हैं तो सभी युद्ध बंदियों को छोड़िए।
इस बीच भारतीय युद्ध बंदियों को रेडक्रॉस की तरफ से कई तरह के उपहार भेजे जाने लगे। करियप्पा को अभिनेत्री आशा पारेख की तरफ से भी एक पैकेट मिला जिसमें कई तरह के मेवे थे। 1966 के नववर्ष की पूर्व संध्या पर जेल का कमांडेंट उनके लिए स्वादिष्ट चिकन करी बनाकर लाया। एक दिन उनकी आंखों पर अचानक पट्टी बांधी गई और पेशावर ले जाया गया। वहां से उन्हें फोकर F-27 विमान पर बैठा दिया गया जो भारत यात्रा पर गए पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को लेने दिल्ली जा रहा था।
हम 7 लोग आए थे एक जहाज, उस वक्त जनरल मूसा दिल्ली में था आर्मी चीफ के साथ बातचीत करने के लिए, तो वो जहाज उनको लेने के लिए आया था। हम 7 उसमें भेजा गया था पेशावर से दिल्ली के लिए, और दिल्ली पहुंचते हुए डायरेक्टर इंटेलिजेंस हमसे मिले, और फिर हम 7 लोगों को एयर चीफ के दफ्तर में लिया गया था। एयर चीफ उस वक्त एयर चीफ मार्शल, अब मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जुन सिंह थे। हम उनके दफ्तर पहले गए थे, उन्होंने कहा खुश है कि आप लोग ठीक ठाक हो, वापस आ गए। और बस मेरे ख्याल में कोई 1/2 घंटे उनके साथ ठहरे, और फिर वापस हम सब लोगों को छुट्टी दिया गया, कोई 4 हफ्ते 1 महीना का छुट्टी दिया गया।
पीठ में लगी चोट की वजह से इसके बाद नंदू करियप्पा फाइटर प्लेन नहीं उड़ा पाए, वो हेलीकॉप्टर उड़ाने लगे। 1971 के युद्ध में उन्होंने हासिमारा में हेलीकॉप्टर की 111 यूनिट को कमांड किया और वो भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल बनकर रिटायर हुए। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और रेहान फजल की ये विशेष प्रस्तुति अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं ऑडियो के रूप में तो आइए bbchindi.com पर, जहां पर आप इसे अगर पढ़ना चाहें टेक्स्ट के रूप में भी ये उपलब्ध है। और अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। पाकिस्तान के पेशावर में वायुसेना के एक बेस कैंप में एक चरमपंथी हमले के दौरान कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। हमले में सेना की कार्रवाई के दौरान 13 चरमपंथी भी मारे गए। मानवाधिकार संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सरकारी युद्ध विमानों ने पलमायरा शहर में IS लड़ाकुओं पर कम से कम 25 हवाई हमले किए हैं। पोप फ्रांसिस के सहयोगियों के मुताबिक पोप फ्रांसिस दमिश्क के एक सीरियाई शरणार्थी परिवार को वेटिकन में अपने अपार्टमेंट में रहने की जगह दे रहे हैं। अमेरिका ने चीन के मोस्ट वांटेड संदिग्ध अपराधी को वापस चीन भेज दिया है। चीन ने जब से विदेश में रह रहे भ्रष्टाचार के संदिग्धों को वापस लाने का अभियान चलाया है तब से अमेरिका से वापस भेजे जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पिछले हफ्ते में 45 लोगों को कुछ परीक्षा पत्र लीक करने के शक में गिरफ्तार किया है। लीक हुए ये परीक्षा पत्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हो रही परीक्षा के हैं। डच पुलिस ने 2 सीरियाई लोगों को मानव तस्करी का गिरोह चलाने के शक में गिरफ्तार किया है। सरकारी वकीलों का कहना है कि इन लोगों ने ग्रीस के रास्ते सैकड़ों लोगों को यूरोप में गैरकानूनी तरीके से पहुंचाया है। BBC समाचार।
समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना, स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने, मैं हूं विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 9:30 बजे घटना चक्र में। नमस्कार।